दोस्तों, कहानी का शीर्षक है चालाक चोर। विमलापुर नामक एक नगर था जो बहुत खुशहाल था, लेकिन नगर में कभी कभी चोरी की घटनाएं हो जाया करती थी। करिया उसी नगर का एक चोर था जो बहुत चालाक था। उसे कोई पकड़ नहीं पाता था। वह छोटी मोटी चोरियां करके भागने में हर बार कामयाब हो जाता था। एक दिन रात को जब वह किसी के यहाँ चोरी करने के इरादे से निकला था, तो रास्ते में उसे एक अजनबी मिला। करिया समझ गया कि वह चोर ही होगा। बातचीत के दौरान दोनों समझ गए कि दोनों का एक ही काम है, चोरी करना। अजनबी का नाम भैरव था। करिया ने भैरव से कहा, उस टोपी वाले आदमी को देखो, वह बहुत अमीर लगता है। मैं उसके पास जाकर देखकर बता सकता हूँ कि उसकी जेब में क्या है, और उसे पता तक नहीं चलेगा। इतना कहकर वह वहाँ से गायब हो गया, और थोड़ी देर के बाद जब वापस आया तो उसके हाथ में एक बटवा था। बटवा खोलकर देखा गया, उसमें सोने के 10 सिक्के थे। यह देखकर भैरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो इससे भी बढ़कर काम करके दिखा सकता हूँ। मैं मालिक को भी चोर साबित कर सकता हूँ। उसने सोने के सिक्कों में से 2 सिक्के निकाल लिए और उनके स्थान पर तांबे के 2 सिक्के रख दिए। उसके बाद वह वहाँ से गायब हो गया। भैरव सीधा उस अमीर आदमी के पास पहुँचा जिसका बटुआ चुराया गया था। उसने बड़ी चालाकी से बटुआ उसकी जेब में डाल दिया और किसी को पता तक नहीं चला। उसके बाद वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। अमीर आदमी घबरा गया। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भैरव ने रुआ से स्वर में बताना शुरू कर दिया, इस आदमी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। इसके पास जो बटुआ है वह मेरा है। विश्वास न हो तो मैं बता सकता हूँ कि बटुए में सोने के 8 सिक्के और तांबे के 2 सिक्के हैं। अमीर आदमी ने कहा, यह झूठ बोल रहा है। मेरे पास लाल रंग का बटुआ है, लेकिन उसमें सोने के 10 सिक्के हैं। बटुआ खोलकर देखा गया। भैरव की बात सच निकली और वहाँ इकट्ठे लोग बेचारे अमीर आदमी को मारने पीटने लगे। भैरव मन ही मन खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। करिया समझ गया कि भैरव उससे भी ज़्यादा चालाक चोर है, अतः उसने भैरव को अपना साथी साझीदार बना लिया और दोनों ने मिलकर कई बड़ा हाथ मारने का फैसला किया। अगले दिन जब रात हुई तो दोनों राजा के महल के ऊपर चढ़ गए और किसी तरह राजसी खजाने के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गए। दोनों ने खजाने से ढेर सारे सोने के सिक्के चुराए और उसके बाद बाहर आ गए। सुबह होने पर राजा को खजाने में चोरी की घटना का पता चला। राजा समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर चोर खजाने तक कैसे पहुँचे होंगे। राजा का एक बूढ़ा मंत्री था जो बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, महाराज, यह किसी अकेले आदमी का काम नहीं है। इसमें 2 आदमी होंगे। एक आदमी अंदर आया होगा और दूसरा छत में सुराख करके उसमें से होकर अंदर आया होगा। बाद में बाहर वाले आदमी ने सुराख बंद कर दिया होगा। सुराख का पता लगाने के लिए कमरे में धुआं सुलगाना पड़ेगा। धुआं जिस ओर जाएगा, समझ लो उधर ही सुराख किया गया होगा। इस प्रकार उन्हें पता चल गया कि चोरों ने छत के ऊपर सुराख किया था। मंत्री ने राजा को सलाह दी, महाराज, चोरी की इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि चोर दोबारा आए। फिर हम यह योजना बनाएंगे और चोर को पकड़ लेंगे। राजा ने उस योजना के बारे में मंत्री पूछा तो मंत्री ने बताया, हम छत पर बने सुराख के नीचे ढेर सारी गोंद भर देंगे, ताकि जब चोर सुराख से होकर नीचे आने लगे तो उसका शरीर वही चिपक जाए और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। एक चोर जब पकड़ लिया जाएगा तो हम उससे उसके दूसरे साथी का पता भी लगा लेंगे। राजा ने वैसा ही किया। अगली रात जब करिया सुराग से होकर नीचे पहुंचा तो उसका पूरा शरीर गोंद से चिपक गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह घबरा कर भैरव से बोला, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं जहर खाकर मर जाऊँगा लेकिन जेल तो नहीं जाऊँगा। उस पर भैरव बोला, चिंता मत करो, मेरे पास एक दवाई है, इसे खा लो, तुम्हारी सांस चलनी बंद हो जाएगी और लोग तुम्हें मरा समझ लेंगे। उसके बाद तुम्हें छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। करिया को सांस बंद करने वाली दवाई देकर भैरव वहाँ से भाग गया। सुबह होने पर राजा ने करिया को मरे आदमी की तरह पड़ा देखा। वह निराश हो गया। उसने सोचा कि अब दूसरे चोर के बारे में पता नहीं चल पाएगा। लेकिन मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, इस मरे हुए चोर को गोंद से बाहर निकाल कर महल के द्वार पर रखवा दें और उस पर कड़ी नज़र रखी जाए। इसके दूसरे साथी को जब पता चलेगा तो वह लाश ले जाने के लिए ज़रूर आएगा। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। लाश को द्वार के सामने रखवा कर वहाँ खड़ा पहरा लगा दिया। पहरेदार चौकन्ने होकर खड़े थे, लेकिन सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, लाश को ले जाने के लिए कोई नहीं आया। अंत में यह बंधेरा होने लगा तो वहाँ रखवाली कर रहे थे पहरेदार सुझलाने लगे। तभी एक बड़ा बूढ़ा आदमी गाड़ी लेकर इधर से उधर आता दिखाई दिया। पहरेदारों के पास पहुंचकर उस बूढ़े आदमी ने कहा, भैया मैं बूढ़ा और लाचार हूँ, आप लोग मेरी गाड़ी में धक्का देकर इसे किले के द्वार से बाहर निकलवाने में मेरी मदद करें, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है और थोड़ी देर में ही किले का फाटक बंद हो जाएगा। मगर मदद के बदले में मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी में लदा शराब का एक कनस्तर दे दूंगा। लालच मिल गई यहाँ तो। पहरेदारों ने कहा, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इस लाश की रखवाली कर रहे हैं। आप लोग आखिर इस लाश की रखवाली क्यों कर रहे हैं, यह तो कुछ भी कर भी नहीं सकती। नहीं, यह बहुत खतरनाक लगती है, इसकी रखवाली करना हमारा कर्तव्य है। पहरेदारों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप लोग लाश की रखवाली करें, मैं किसी तरह चला जाऊंगा। मुझे तो डर नहीं लग रहा है कि कहीं यह मरा हुआ आदमी मुझे कुछ हानि न पहुंचाए। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी को आगे धकेलने लगा। पहरेदारों को शराब नहीं मिली, इस कारण वे परेशान थे। वे सोचने लगे कि अब तक तो इस लाश को ले जाने के लिए कोई आया नहीं, इसलिए क्यों न उसकी गाड़ी में थोड़ी दूर तक धक्का देकर शराब का ही आनंद लिया जाए। यह सोचकर वे बूढ़े आदमी की गाड़ी में धक्का देकर उसकी मदद करने लगे। बूढ़े आदमी ने तुरंत उन्हें शराब का एक कनस्तर थमा दिया। शराब देकर पहरेदार अपने मन पर काबू नहीं रख पाए, वे कनस्तर में से शराब निकाल कर पीने लगे। बूढ़े आदमी ने भी उनके साथ थोड़ी सी पी ली। शराब बहुत अच्छी थी, पहरेदारों ने भी भरकर पी और थोड़ी ही देर में वे नशे में धुत होकर वहीं पर गिर पड़े। मौका पाकर बूढ़े आदमी ने करिया को कोई दवाई सुझाई और वह होश में आकर उठ बैठा। वह सारी बात समझ गया था। गाड़ी लेकर वह किले के फाटक से बाहर निकल गया। किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ, किले के फाटक बंद हो गया। अगली सुबह जब महल के दरबारी सोकर उठे तो उन्होंने पहरेदारों के साथ एक बूढ़े आदमी को भी बेहोश पाया। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आने लगा। बूढ़ा आदमी जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारी जादुई लाश ने हम सभी पर जादू कर दिया था, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी शराब से लदी गाड़ी लेकर वह भाग गए, मेरा भारी नुकसान हुआ है, उसे ढूंढने में आप लोग मेरी मदद करें। पहरेदारों को अपनी चिंता हो रही थी, वे कहने लगे, अरे बुड्ढे तू यहाँ से जा, हम तो और भी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए हैं, हमें सजा मिलने का डर है। बूढ़ा आदमी रोने का बहाना करते हुए सिपाहियों के साथ किले के अंदर चला गया और वहाँ भीड़ में पहुंचकर गायब हो गया। जब राजा को यह सब पता चला तो वह और भी चिंतित हुआ। इस बार मंत्री ने उसे दूसरी सलाह दी और कहा, महाराज दोनों ही चोर बहुत चालाक हैं, उन्हें पकड़ पाना मुश्किल है, हमें उनकी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए और उन्हें अपने यहाँ मुख्य सुरक्षा अधिकारी बना देना चाहिए। वे राज्य में होने वाली चोरियों का पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक चालाक चोर ही दूसरे चोरों की चालाकी समझ सकता है। इस प्रकार दोनों चोरों को नगर का कोतवाल बना दिया गया। क्या कैसी लगी कहानी बच्चों? आपको भी चालाकी से सभी काम करने चाहिए और लेकिन चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।